इधर दूसरी ओर अभय की माँ उसे अपनी कांपती बाहों में थामे हुए थी। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। हर सिसकी के साथ उसका दिल जैसे टूटता जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो यह उसकी आखिरी रात हो, मानो वह अपने पुत्र को हमेशा के लिए खो चुकी हो। रोते रोते कब उसकी आंखें भारी हो गईं, उसे खुद भी पता नहीं चला। अभय को सीने से लगाए उसी अवस्था में वह सो गई। पर उसे क्या पता था, जिस पुत्र को वह शांत नींद में सोता हुआ समझ रही थी, वही अभय इस समय अपने भीतर एक महायुद्ध लड़ रहा था। अभय की चेतना एक अनजान लोक में खड़ी थी। वहां वह खुद को देख रहा था, एक और अभय जो उससे बिल्कुल अलग था, फिर भी वही था। चारों ओर उजाला फैला हुआ था, आकाश स्वच्छ था, हवा में शांति थी। वह अपने पिछले जन्म के माता पिता के साथ हंस रहा था, खेल रहा था। उनकी हंसी सच्ची थी, निश्चल, किसी डर से मुक्त। यह उसका पिछला जन्म था।
वह यादें जो उसने कभी कॉन्शियसली नहीं जानी थी, आज उसके सामने जीवित थी।
माँ का स्नेह, पिता का कंधों पर बैठाकर घुमाना, और वह सुरक्षा जो हर बच्चे को मिलनी चाहिए। अभय उन पलों को देखकर कुछ क्षण के लिए भूल गया कि वह कौन है, कहाँ है। उसके चेहरे पर भी एक हल्की मुस्कान आ गई, लेकिन तभी उजाले में दरार पड़ने लगी, हवा ठंडी हो गई, आकाश का रंग बदलने लगा। दूर कहीं से अंधकार रेंगता हुआ आ रहा था, धीरे मगर निश्चित। अभय का हृदय जोर से धड़क उठा, पहले तो उसे भय ने जकड़ लिया। उसका शरीर कांपने लगा, वह पीछे हटना चाहता था, पर उसके पैर जैसे जड़ हो गए हों। अंधकार उसके चारों ओर फैलने लगा, मानो वह उसकी यादों को निगलना चाहता हो।
वह अंधकार केवल खालीपन नहीं था, उसमें क्रोध, लालच थी, साधारण लालच नहीं, शक्ति की लालच और रक्त की गंध थी।
अभय को अचानक कुछ याद आया, एक नाम, एक चेहरा, एक भयावह अस्तित्व। अभय, तांत्रिक खेल का वह खलनायक, जिसने अपने तंत्र कौर को रक्त से सींचा था, जिसने पूरे राज्य की बलि चढ़ा दी थी अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए। नहीं, अभय के होंठ कांपे, क्या वह वही है? डर ने उसके मन को जकड़ लिया। उसे लगा जैसे वो अंधकार उसी का प्रतिबिंब हो, लेकिन तभी उसके भीतर कुछ बदला। उसने गहरी सांस ली, अपने कांपते मन को स्थिर किया। अगर यह मेरा अतीत है, वह खुद से बोला, तो मैं इससे भागूंगा नहीं। उसकी आंखों में दृढ़ता चमक उठी। अंधकार उसके और पास आया, पर इस बार अभय नहीं डरा। वो खड़ा रहा, सीधा, शांत। उस क्षण अंधकार रुक गया, मानो पहली बार किसी ने उसे चुनौती दी हो। अभय की चेतना के भीतर एक हल्की सी चमक उत्पन्न हुई। यह कोई साधारण ऊर्जा नहीं थी, ये स्मृति और इच्छा शक्ति का संगम था। और उसी क्षण वास्तविक संसार में बिस्तर पर सोए अभय की भौहें हल्के से हिलीं। उसके चेहरे पर शांति बनी रही, पर उसके भीतर एक नई कहानी जन्म ले चुकी थी। अभय उस अंधकार की ओर बढ़ने लगता है। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। सामान्य स्थिति में कोई भी इंसान उस दिशा से दूर भागता, कोई भी उस अज्ञात डरावने अंधेरे की ओर कदम नहीं बढ़ाता,
लेकिन अभय के भीतर कुछ ऐसा था जो उसे रोक ही नहीं पा रहा था। ये केवल जिज्ञासा नहीं थी, और न ही यह पूरी तरह मूर्खता कही जा सकती थी।
यह ऐसा था जैसे उस अंधकार के भीतर कोई उसे बुला रहा हो,
जैसे कोई भूली बिसरी आवाज उसके मन के सबसे गहरे कोने से पुकार रही हो। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। चारों ओर सब कुछ काले अंधेरे से ढका हुआ था।
कोई जमीन साफ दिखाई नहीं दे रही थी, न आसमान, न दिशा, न अंत, बस एक अंतहीन शून्य। फिर अचानक उस अंधेरे के बीच कुछ हिलता है। धुंधले काले बादल, अजीब से भारी और गाढ़े, वे बादल धीरे धीरे एक जगह इकट्ठा होने लगते हैं, मानो किसी अनदेखी शक्ति के इशारे पर आकार ले रहे हों। अभय रुक जाता है। उसके भीतर हल्का डर पैदा होता है, पर वह डर उसे पीछे नहीं खींचता, बल्कि उसके कदम और मजबूत हो जाते हैं। काले बादलों के बीच अचानक एक दृश्य उभरता है। वो खुद को देखता है, पर यह वो अभय नहीं था जो अभी वहां खड़ा था। यह उसका असली अभय था, इस दुनिया का अभय, एक छोटा सा बच्चा जिसकी आंखों में मासूमियत और आत्मविश्वास दोनों थे। वह देखता है कि कैसे वो बचपन से ही असाधारण था, कैसे छोटी उम्र में उसने एक जंगली भेड़िए को हरा दिया था, कैसे डर उसके लिए कभी बाधा नहीं बना। फिर दृश्य बदलता है। वह अपनी माँ के हाथों का बना खाना खा रहा होता है, चेहरे पर सच्ची मुस्कान, आंखों में खुशी। उस पल में कोई अंधकार नहीं था, कोई लालच नहीं, कोई क्रूरता नहीं। अभय का मन कांप उठता है, तो यही था असल में। लेकिन उसे ज्यादा देर उस शांति में रहने नहीं दिया जाता। काले बादल फिर से हिलते हैं, तेजी से, क्रूरता से। वह दृश्य टूट जाता है, जैसे किसी ने जबरदस्ती स्मृति को चीर दिया हो। अगला दृश्य बनता है, यह वही रात थी, काले लिबास पहने लोग, छुपे हुए चेहरे, ठंडी आंखें, हमला, चारों ओर अफरा तफरी, दर्द, खून, असहायता। अभय ये सब देखता है, पर इस बार वह चिल्ला नहीं पाता, भाग नहीं पाता, बस देखता रहता है। उसके भीतर कुछ टूटता है। फिर काले बादल एक बार और आकार बदलते हैं। इस बार जो दृश्य बनता है वो पहले से भी ज्यादा भयावह होता है। एक विशाल कब्रिस्तान जहां तक नजर जाती है, कब्रें ही कब्रें, लाखों कब्रें।
हवा भारी थी, खामोशी इतनी गहरी कि सांसों की आवाज भी डरावनी लगने लगे। अभय बिना कुछ बोले आगे बढ़ने लगता है, एक पतले से रास्ते पर
जिसका अंत दिखाई नहीं देता। हर कदम के साथ उसके भीतर एक अजीब शांति उतरती जाती है।
न डर, न पछतावा, मानो वह जानता हो ये रास्ता उसके सच तक ले जाएगा।
और जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है, कब्रों के बीच खड़ा वह अकेला बालक धीरे धीरे अपने खलनायक अस्तित्व की ओर बढ़ रहा होता है। अंत में वह रास्ता उसे एक ऐसे स्थान पर ले आता है जहां हवा तक मरी हुई लगती है। कब्रों की कतारें अचानक थम जाती हैं और उनके बीच खड़ा होता है एक वीरान टूटा फूटा मंदिर। अभय वहीं रुक जाता है। पहली नजर में ही उसे कुछ बहुत गलत महसूस होता है। कब्रिस्तान और यहां मंदिर, वह धीरे धीरे चारों ओर देखता है। यह एक ईसाई कब्रिस्तान था, लकड़ी के टूटे हुए क्रॉस, जमीन में धंसी कब्रें और उन पर जले हुए नाम, और ठीक उनके बीच एक मंदिर। अभय के भीतर अजीब सी सिहरन दौड़ जाती है। यह असंगति डरावनी थी, जैसे दो अलग अलग वास्तविकताओं को जबरदस्ती एक साथ जोड़ दिया गया हो। वो मंदिर बाहर से ही इतना विशाल था कि उसकी ऊंचाई का अंदाजा लगाना मुश्किल था। उसकी दीवारें ऊपर जाती चली जाती थीं, जैसे उनका कोई अंत ही न हो। पत्थर काले पड़ चुके थे, दरारों में से अजीब सी ठंडी हवा निकल रही थी। अभय को ऐसा लगा जैसे यह मंदिर उसे देख रहा हो। वह जानता था उसे यहां से लौट जाना चाहिए, पर उसके कदम आगे बढ़ते चले गए। मंदिर के मुख्य द्वार के सामने आकर वह रुकता है। दरवाजा बेहद विशाल था, मोटा, भारी और प्राचीन, ऐसा दरवाजा जिसे एक छोटा बच्चा हिला भी नहीं सकता। अभय धीरे से अपना हाथ उस पर रखता है, उसका हाथ कांपता है। फिर वह हल्की सी दस्तक देता है, ट ट कुछ नहीं होता। वह एक पल रुकता है, फिर दोबारा दस्तक देता है, थोड़ी जोर से, फिर भी कुछ नहीं होता है। वह मुड़कर वापस कुछ कदम चलता है, पर उसे ना जाने क्या सूझता है कि वह वापस आकर उस दरवाजे को धक्का देता है। वैसे तो ये ख्याल ही काफी बेतुका है कि एक 3 साल का बच्चा 2 मंजिल लंबे दरवाजे को धक्का मारकर खोलने की कोशिश कर रहा है, पर तभी कि एक डरावनी आवाज गूंजती है। अभय की आंखें फैल जाती हैं। वो दरवाजा खुल रहा था, भारी पत्थर का वह द्वार जिसे खोलना असंभव होना चाहिए था, धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। अभय पीछे नहीं हटता, वो अंदर कदम रख देता है। अंदर का दृश्य उसकी सांसें रोक देता है। चारों ओर कंकाल, हर तरफ बिखरे हुए मानव कंकाल, कुछ दीवारों से चिपके हुए, कुछ जमीन पर गिरे हुए और कुछ ऐसे जैसे भागते भागते वहीं मर गए हों। उनकी हड्डियां टूटी हुई थीं, खोपड़ियों पर गहरे निशान थे। ये साफ था, उन्हें मारा गया था, और वह भी बेरहमी से। अभय का गला सूख जाता है, वह एक कदम आगे बढ़ाता है, तभी उसकी नजर ऊपर जाती है। मंदिर की छत सामान्य नहीं थी, वहां कोई ठोस छत नहीं थी। हवा में लाशें तैर रही थीं, मानव शरीर आधे जले हुए, मरोड़े हुए और फिर भी हवा में स्थिर। उनके चारों ओर आग जल रही थी, लेकिन वह आग उन्हें पूरी तरह जला नहीं रही थी। वे जल रहे थे, लगातार न गिर रहे थे, न खत्म हो रहे थे। अभय की आंखें कांप जाती हैं, उसके भीतर डर उठता है, पर उसके पैर पीछे नहीं हटते। उसे ऐसा लगता है जैसे ये सब पहले भी देखा हो, जैसे ये दृश्य किसी भूली हुई स्मृति का हिस्सा हो। मंदिर के भीतर एक अजीब सी गूंज थी, कोई आवाज नहीं, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे हजारों चीखें दीवारों में कैद हों। अभय धीरे धीरे आगे बढ़ता है, हर कदम के साथ उसका दिल भारी होता जाता है। उसे समझ में आने लगता है, यह मंदिर कोई साधारण स्थान नहीं है, ये बलि का स्थान है, पाप का भंडार है, और शायद उसकी किस्मत की जड़। मंदिर के बीचों बीच एक अंधकार खड़ा था, गहरा, शांत और बुलाता हुआ। अभय वहीं रुक जाता है। उसके चेहरे पर डर नहीं था, न ही घृणा, बस एक अजीब सी शांति, जैसे वह जानता हो अब पीछे लौटने का रास्ता बंद हो चुका है। और इसी मंदिर में, इसी क्षण, अभय के भीतर का युद्ध अपने सबसे खतरनाक मोड़ की ओर बढ़ने लगता है। अंदस को ये सब देखने के बाद भी अभय के कदम नहीं रुकते। उसका दिल तेज धड़क रहा था, पर उसके पैर पीछे हटने को तैयार नहीं थे, जैसे किसी ने उसके भीतर से डर को अलग कर दिया हो। वह आगे बढ़ता जाता है, उसे खुद नहीं पता कि उसे रास्ता कैसे मिल रहा है। न कोई निशान, न कोई दिशा, फिर भी वो भटक नहीं रहा था, जैसे ये जगह उसे रास्ता दिखा रही हो। रास्ते के दोनों ओर पड़े कंकाल, आधे जले हुए शव, टूटी हड्डियां, उन्हें देखकर अभय को एहसास होता है यही रास्ता है, मानो ये लोग जब जिंदा थे इसी दिशा में दौड़े होंगे, किसी को रोकने के लिए, किसी ऐसी शक्ति को जो उनके लिए बहुत ज्यादा थी, और अब मौत के बाद भी उनके शरीर इसी रास्ते की ओर इशारा कर रहे थे। अभय के भीतर एक अजीब सा विचार उभरता है, शायद इन लोगों ने उस ताकतवर शख्स को रोकने की कोशिश की होगी और अंत में इन्हें सिर्फ एक ही चीज मिली, मौत। ये सोचकर उसकी रीढ़ में हल्की सी हिरन दौड़ जाती है, पर वह रुकता नहीं। कुछ दूर आगे बढ़ते ही उसके कदम अपने आप थम जाते हैं। उसके सामने कंकालों का एक विशाल पहाड़ खड़ा था, हजारों नहीं शायद लाखों हड्डियां, खोपड़ियां, रीढ़, हाथ, पैर, सब एक दूसरे में उलझे हुए, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें इस तरह जमा किया हो। पहली नजर में ही अभय डर जाता है, उसकी सांस अटक जाती है, आंखें फैल जाती हैं, पर अगले ही पल वह खुद को संभाल लेता है। उसके भीतर एक ठंडी सी शांति उतर आती है। अंडरस्कोर, अगर सामने वाले को कुछ करना होता तो वह अब तक कर चुका होता, ये सोच उसके डर को काट देती है। वह कंकालों के उस पहाड़ को ध्यान से देखने लगता है, पर तभी उसकी नजर कुछ और ही चीज पर चली जाती है। कंकालों के उसी पहाड़ के पीछे एक और पहाड़ खड़ा था, लेकिन यह हड्डियों का नहीं था, यह एक विशाल इंसानी खोपड़ी का पहाड़ था, इतनी बड़ी कि उसकी ऊंचाई देखकर अभय की गर्दन अपने आप ऊपर उठ जाती है। खोपड़ी का एक हिस्सा टूटा हुआ था, जैसे किसी देवस्तर की शक्ति ने उसे तोड़ दिया हो, और उसी टूटी हुई खोपड़ी के बीचों बीच एक विशाल त्रिशूल
धंसा हुआ था। वह त्रिशूल साधारण नहीं था, उसका आकार एक कई मंजिला इमारत जितना विशाल था।
त्रिशूल की नोक खोपड़ी को पूरी तरह छेदती हुई उसे जमीन में एक कील की तरह ठोक रही थी, मानो इस पूरी खोपड़ी के पहाड़ को इसी त्रिशूल ने बांध कर रखा हो। त्रिशूल के चारों ओर काली और नीली आभा घूम रही थी, हवा वहां पहुंचकर मुड़ जाती थी,
जैसे वह भी उस शक्ति से डरती हो। अभय की सांसें अपने आप धीमी हो जाती हैं। उसके भीतर एक अजीब सा एहसास पैदा होता है, यह कोई सजा थी, कोई चेतावनी नहीं, यह किसी राजा को बांध कर रखने का तरीका था। अभय धीरे धीरे आगे बढ़ता है। खोपड़ी के उस विशाल मुंह के भीतर एक रास्ता जाता दिखाई देता है। अंदर अंधकार था, लेकिन वह अंधकार खाली नहीं था, वह भारी था, पुराना था और राजसी था। अभय बिना रुके उस खोपड़ी के भीतर कदम रख देता है। अंदर का दृश्य उसकी सोच से भी ज्यादा भयानक और भव्य होता है। खोपड़ी के भीतर एक पूरा राज दरबार बना हुआ था, काले पत्थरों से बने खंभे, दीवारों पर जमी सूखी रक्त रेखाएं और जमीन पर उकेरे गए अजीब प्राचीन चिन्ह।